कोविड-19 महामारी ने लगभग 100 वर्षों तक नहीं देखे गए व्यवधान पैदा किए। महामारी ने कई प्रोजेक्ट्स को रोक दिया, शहरों के साथ सीमाएं भी बंद थी। दुनिया भर के सभी देश अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रबंधित करने की कोशिश कर रहे थे। महामारी से निपटने के लिए दुनिया के संसाधनों को पुनर्निर्देशित किया गया था। ग्लोबल फंड के कार्यकारी निदेशक पीटर सैंड्स बताते हैं कि जिन संक्रामक रोगों को बिग थ्री के नाम से जाना जाता था, वे एक कदम पीछे हट गए।
COVID-19 had a pretty devastating impact on the fight against HIV, TB and malaria. For the last two decades, we've made huge progress in reducing deaths and infections from these three diseases. But in 2020, for the first time in the history of the Global Fund, we saw reversals across all three diseases.
महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर एचआईवी मामलों की सूचनाओं में कमी आई, लेकिन एक दशक में पहली बार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इसकी वृद्धि हुई। 2020 से 2021 के बीच 260,000 नए मामले सामने आए। महामारी के पहले वर्ष में मलेरिया वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा था, साथ ही 14 मिलियन मामलों और 2020 में 69,000 तक मौतों के आंकड़े सामने आए। लेकिन टीबी विशेषज्ञ सबसे ज्यादा चिंतित हैं। 2020 में मामले वास्तव में 130,000 तक गिर गए, लेकिन ग्लोबल फंड का कहना है कि 10 लाख तक लोगों को इलाज नहीं मिला और एशिया पैसिफिक में सभी संक्रमणों का 61% यानी सबसे अधिक मामले सामने आए। श्री सैंड्स कहते हैं कि कोविड-19 महामारी का यह प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसमें कई कर्मचारी और मूलभूत सुविधाओं का उपयोग ट्यूबरकुलोसिस के परीक्षण और उपचार के बजाय कोविड के लिए किया गया था।
What we saw in 2020 is a repurposing of TB capabilities to respond to the pandemic, which is completely understandable, but it did have the consequence of a very sharp drop in TB testing and the enrollment of people on treatment. With those people not being diagnosed and treated, they are therefore likely to be infecting other people.
महामारी से पहले तीन बीमारियों के मामलों में गिरावट आ रही थी। श्री सैंड्स ऑस्ट्रेलिया को पटरी पर वापस आने के लिए कह रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि अगले तीन वर्षों में ग्लोबल फंड में अपनी फंडिंग को लगभग दो गुना करके $450 मिलियन कर दिया जाए। देश के कुछ प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ उनका समर्थन कर रहे हैं, जिनमें बर्नेट यूनिवर्सिटी के निदेशक प्रोफेसर ब्रेंडन क्रैप भी शामिल हैं।
Tuberculosis in particular almost belongs here. This is the epicenter of the world's TB problem. We obviously also have a lot of malaria in the region. We have a particular responsibility here in Australia and in countries around us to try to tackle this, you know, most insidious, largely invisible disease. I think many people watching this would think, you know, TB, is it still a problem? Well, it's actually the world's biggest health problem. I think Australia needs to see this as an investment in a healthy and more stable and wealthier region, not just as a cost and as a nice thing to do. It is the right moral thing to do, but it's one of the most important investments this country can make.
समूह इस सप्ताह के अंत में विदेश मंत्री पेनी वोंग से मिलने के लिए तैयार है। वे अगले महीने तक वैश्विक स्तर पर $26 बिलियन सुरक्षित करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि अगले तीन वर्षों में 20 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है। प्रोफेसर क्रैब मानते हैं कि विकल्प अच्छा नहीं है।
The world's at a pivotal moment. For the first time in 65 years, we are seeing life expectancy decline right throughout the world. We've nearly seen a two-year decline after 65 years of increase. We simply can't let that continue. It's a binary thing. We either go into free fall or we turn it around. There is no stasis. I think we've learnt that through COVID. You're either going up or you're going down. And there's no magic way to do it. You have to do the hard yards. The Global Fund is the major agency in the world to tackle these three diseases, and we've just got to get behind them and support them fully.
SBS News के लिए क्लाउडिया फरहार्ट की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया प्रियंका हतवर्णे ने।